Beyond Cooking with Chef Rakesh Sethi. A Pod One Production.
सभी लिस्टर्स को राकेश सेठी का स्वाद भरा नमस्कार। बियॉन्ड कुकिंग विद शेफ राकेश सेठी में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान एक जाने माने सेलिब्रिटी शेफ है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जो छोटे शहरों से आए लेकिन उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, एक मुकाम हासिल किया है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, ओनली ऑन बियॉन्ड कुकिंग विद शेफ राकेश सेठी। शेफ अजय, वेलकम टू द शो।
Thank you so much, Chef. Thank you so much for having me here. And it's really a pleasure to be with you.
Thank you very much. So Ajay, to begin with, humne research kari aur ye jana ki jo aapke shuruaati din hain, wo Sonipat, Alwar aur Faridabad mein beete the. So listeners would love to know about your those younger days, school days. तो उनको कुछ उस बारे में बताइए।
तो शेफ, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन जब मैं 3 साल का था तो पेरेंट्स, डैड हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो वो मूव हो गए थे वहां से अलवर में। तो कुछ 8 साल हमने अलवर में बिताए, तब तक स्कूल में ही था। उसके बाद हम लोग सोनीपत मूव हुए, और आई थिंक जब सोनीपत मूव हुए तब मैं कुछ 9 या 10 साल का था, और वहां पर मेरी मम्मी के साथ किचन में खड़ा होना मुझे बहुत पसंद था। Okay. और वहीं से आई थिंक जो प्रेम था खाने के लिए वो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ था। आई वोंट से कि वो एस्टैब्लिश हो गया था, बट कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। एंड होता ये था जब कि उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट 1988-89, चाइनीज गाड़ियां बड़ी फैशन में थी उस टाइम। लाल कलर के ट्रक होते थे, तो वहां पे जो ये आजकल मोमोज बिकते हैं, पर वहां पे उस टाइम पे चाउमीन बहुत बिका करती थी।
आप लखनऊ में पैदा हुए हैं, वो एक ऐसा शहर है जहाँ से हम जुड़ते हैं खाने के साथ, यू नो, लखनऊ के खाने के साथ। तो जब आप लखनऊ में पैदा हुए हैं तो खाने से झुकाव, खाने की तरफ झुकाव तो आपका होना ही था, तो ये बड़ी ऑब्वियस ही बात है। तो जब आप स्कूल डेज में थे, और आपने बताया कि आप अपने 9 साल की उम्र में ही मम्मी के साथ थोड़ा बहुत किचन में खाना बनाने में इंटरेस्ट था आपका, तो घर पे और कौन कौन था जब आपके यंग डेज थे? तो
हम लोग 3 भाई हैं शेफ। बड़े भैया जो हैं वो इंजीनियर हैं, बीच वाले भाई जो हैं उन्होंने MBA किया है, पापा इंजीनियर हैं, तो कहीं से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है कि कोई भी होटल्स में हो या खाने में हो, बट मैं अकेला ही निकल गया था अपनी फिराक में। सो यस, वही है कि हर चीज वहां पे जब मैं बच्चा था तो क्यूरियोसिटी बहुत थी मेरे को। मैं उन चाइनीज गाड़ियों से क्यूरियोसिटी के बारे में बता रहा था, क्योंकि मैं देखता रहता था कि किस तरह से वो इतनी तेजी से चॉप करते हैं, और फिर घर आता था और वो वापस से मैं चॉप करने की कोशिश करता था और उंगली काट लेता था। तो ये सारी चीजें 12-13 साल के उम्र में हुई थी। पढ़ाइयों में ओके था, आई वॉज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट, लेकिन जब मैंने 12th पास किया तो ऑब्वियसली प्रेशर था पेरेंट्स की तरफ से कि यू नो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। पेरेंट्स हमेशा यही होता था कि 2 ही चॉइसेस होते थे, या तीसरी चॉइस होती थी LLB, अगर ये नहीं करोगे तो तुम लॉयर बन जाओ। लेकिन somehow पढ़ाई में इतना ज्यादा पढ़ाई करना मुझे पसंद नहीं था, तो एक एग्जाम दिया था साथ में इन सब चीजों के साथ में, एंट्रेंस एग्जाम के साथ में, और वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं अपने पिताजी के पास गया और कहा कि पापा देखो यही है, यही सिलेक्शन हुआ है, यही करना है, मेरे को लगता है यही ठीक रहेगा मेरे लिए।
यही शेफ मैं जानना चाहता था कि 12th पास करते करते जो यंगस्टर्स होते हैं उनके मन में ये सवाल दौड़ने लग जाता है कि आगे क्या करेंगे हम, क्या बनना चाहते हैं वो। तो आप शेफ बनना चाहते हैं, यह ख्याल आपको कब आया और कैसे?
तो मैंने 12वीं कक्षा में ही एक टीवी प्रोग्राम देखा था जिसका नाम था मिर्च मसाला। और इनफैक्ट शेफ ये बात छुपी नहीं है, क्योंकि आप और शेफ संजीव कपूर जो है बहुत सारे शेफ्स के लिए एक इमेज रहे हैं, एक छवि रहे हैं जिनको फॉलो किया गया। तो क्योंकि हमें शेफ्स के बारे में कुछ पता नहीं था, होटल्स के बारे में कुछ पता नहीं था, और आप दोनों ने जो शुरुआत की थी कि किस तरीके से होटल का खाना घर पे बनाया जा सकता है, वो शुरुआत जो आपने की थी, वो जो पाथ फाइंडिंग आपने की थी, वो आज भी चल रही है, और आज तो खैर अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। तो हाँ, वहां मैं वो प्रोग्राम्स में देखना मुझे बहुत पसंद था। उसके साथ साथ जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो एक और प्रोग्राम था जिसमें हॉस्पिटैलिटी के बारे में सब कुछ बताया गया था। तो उसमें मतलब क्या आगे कैसे बढ़ते हैं, क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं, तो एयरलाइन वॉज अनदर फील्ड जो कि आगे हुई। तो ये सारी चीजें जो है देख के मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक करियर है जो हो सकता है।
तो उस समय ये ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता था IHM के बारे में, एटलीस्ट मेरे टाइम में नहीं पता था। तो आपके टाइम में तो चीजें काफी ओपन थी और बच्चों को नॉलेज थी IHM करने में, लेकिन IHM की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ, आपने कैसे सोचा कि मुझे IHM करना चाहिए?
टू बी ऑनेस्ट शेफ, हमारे टाइम में भी मतलब मैं आई जॉइंड इन 1995, उस टाइम पे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि मेरे बड़े भाई के एक फ्रेंड थे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट शुरू की पानीपत कॉलेज से, तो मैंने भी वहां जाके अप्लाई कर दिया एंड आई वुड से फॉर्चुनेटली मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि परमेश्वर ने एक राह मेरे लिए चुन के रखी थी कि मैं IHM में ही जाऊं।
There was something better in store.
Yes. So, उसके बाद मुझे पता लगा कि अच्छा IHM जैसी भी कोई चीज होती है, ये नेशनल काउंसिल का एक एग्जाम है, इसे पास किया जाए। तो अगले साल मैंने नेशनल काउंसिल का एग्जाम दिया और फिर मैं पास आउट हुआ और मुझे गोवा मिला। Okay. तो यहां से जर्नी की शुरुआत हुई।
तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, एटलीस्ट मेरे टाइम में तो गूगल नहीं था, मोबाइल फोन तो होते ही नहीं थे और बिल्कुल अच्छी अच्छी जो बुक्स है वो भी बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो हम क्या करते थे, संडे के दिन दरियागंज जाते थे और वहां से कुछ कुकिंग की बुक्स जो बाहर की होती थी उनको लेके आते थे, फोटोकॉपी करते थे उनकी, और फोटोकॉपी करने के बाद स्पाइरल बाइंडिंग करके वहां से हम रेसिपीज देखते थे और सीखते थे। तो क्या कॉलेज डेज में या IHM के डेज में आपको भी ऐसे कुछ चैलेंजेस आए थे?
शेफ, आई थिंक आपके चैलेंजेस ज्यादा गंभीर थे क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ते गए चीजें आती गई। हमारे टाइम में भी गूगल नहीं था लेकिन थोड़ी किताबें शायद हमें लाइब्रेरी में ज्यादा मिलने लग गई थी या फिर थोड़ा एक्सेस बढ़ गया था। लेकिन एक चीज जरूर थी कि जितनी एक्सेसिबिलिटी आज है उसके मुकाबले तो कहीं पे भी नहीं थे हम। मेरा जो किचन में इन जाने का मतलब जो तय हो गया था, क्योंकि होटल मैनेजमेंट करने के जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास चार फील्ड सामने खुली होती हैं। मेरा जो सीधा फोकस हुआ था जब पहले महीने में एक मीरामार फूड फेस्टिवल जो हमारा कॉलेज पार्टिसिपेट करता था उसके लिए फर्स्ट ईयर्स को घुसा दिया गया क्वांटिटी किचन में और कुछ 350 चिकन थे और उस टाइम चिकन पील होके नहीं आते थे तो पील करने पड़ते थे। तो हम लोग 120 का बैच था, 350 चिकन थे, यानी कि मैथमेटिक्स कहती है कि हर एक बंदा 3 चिकन पील करेगा। लेकिन आधे घंटे तक मुझे कोई सुध नहीं थी, मैं चिकन पील करे जा रहा था और आधे घंटे बाद मैंने सर उठा के देखा तो सिर्फ 4 या 5 लोग वहां पे खड़े थे और वो चारों पांचों आज शेफ हैं, बाकी सब गुल हो गए थे। मतलब
ये बहुत,
आई रियलाइज कि दिस इज व्हाट आई रियली लाइक एंड लव, यही है मेरी जिंदगी, मैं यही करने वाला हूँ।
जिसने उस समय ये हिम्मत नहीं आ रही और लगा रहा, ऑब्वियसली फिर उसने कुछ ना कोई मुकाम हासिल करना ही है। दिस इज व्हाट इट शोज कि यू नो आप में डेडिकेशन थी। लोग वहां की चिकन छीलते समय की स्मेल या बुचरी की जो लुक एंड फील है उसी से घबरा के निकल जाते हैं।
इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेफ, आई थिंक हमें नॉलेज के लिए वही करना पड़ता था जैसे आप करते थे। इनफैक्ट हमारे टीचर ने हमें एक अच्छी आदत दिलाई थी कि सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट हर महीने हमें सेव करने को बोलते थे कि हर महीने एक किताब खरीदो। तो वो एक आदत हमें इनकलकेट की थी जो हमने थोड़ी आगे तक उसको यूज किया, उसकी वजह से हम आगे बढ़ने लगे। बट हाँ, स्पाइरल बाइंडिंग हमने भी बहुत करी है,
मेरे पास आज तक पड़ी है।
मेरे पास भी है शेफ।
और मेरे घर में कहा जाता है कि अब इन बुक्स को यूज नहीं कर रहे क्योंकि आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाता है, तो व्हाट शुड वी डू, यू नो, शुड वी डिस्पोज देम? आई सेड नहीं, ये मेरा ट्रेजर है।
करेक्ट,
ये मेरा खजाना है, इसको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होता हो।
और खजाने को तो राजमहल में रखा जाता है।
एब्सोल्युटली। तो IHM के बाद क्या किया आपने?
तो IHM के बाद सिर्फ मेरा एक्चुअली IHM करते करते मुझे समझ में आया था कि OCLD जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे वहां पे किसी भी तरह होना है। थर्ड ईयर तक मैंने बहुत मेहनत करी, इनफैक्ट कलनरी में मैं काफी अच्छा था, गोल्ड मेडलिस्ट था। IHM का जो शेफ्स कंपटीशन होता है उसमें भी हमने गोल्ड मेडल जीते। लेकिन 98 वाज एन अनफॉर्चुनेट ईयर व्हेन आई वाज पासिंग आउट। उस साल को जॉब्स थी ही नहीं एंड OCLD का इंटरव्यू हुआ और 40-50 मिनट के इंटरव्यू में मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन अब हो ही जाएगा। बट आखिरी 10 मिनट डिसाइडिंग मिनट थे और उसमें मिस विजय कुमार एंड मिस्टर बर्नर्ड मार्ट्रेस जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, मतलब लिटरली छील दिया और 10 मिनट के अंदर मतलब मैं जमीन पे आ गया और उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ताज में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आई रीच्ड आउट टू शेफ मंजीत सिंह गिल, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास अप्रेंटिस की जगह है। तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैं तो अभी होटल मैनेजमेंट कर चुका हूँ, मैं अप्रेंटिस क्यों करूंगा वापस से। सो फिर मैंने फाइनली TGI फ्राइडे ज्वाइन किया एज अ प्रेप कुक एंड 7 महीने मैंने वसंत विहार में जो पहला TGI फ्राइडेज था वहां पे काम किया। हर दिन अपने आप को कोसा कि ये करने के लिए मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। क्योंकि एक छोटी सी किचन थी वहां पे, मैं सिर्फ पूरी शिफ्ट में शेफ सिर्फ कैबेज काटता था, चीज स्लाइस करता था और टोमेटो स्लाइस करता था, पूरा शिफ्ट मतलब 9-10 घंटे यही करता था एंड आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। तो एक रात को एक फोन आया कि एक जॉब निकली है सेसिल शिमला में, आप जाना पसंद करोगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो कब है इंटरव्यू? कल सुबह. सो दैट नाइट आई हैड टू टेक अ लीव. अगले दिन की शिफ्ट में किसी को वहां पे डालना था. फिर रात की बस पकड़ के मैं शिमला पहुंचा, रातों रात ट्रैवल करके. अगले दिन सुबह मैंने इंटरव्यू दिया और सेसिल शिमला में मेरा सिलेक्शन हुआ. वहां से मेरी जिंदगी फिर आगे एक नया मोड़ लेके गई. डेढ़ साल मैंने सेसिल में काम किया. 99 में OCLD का बैच ही नहीं हुआ था और फिर उसके बाद 2000 में फाइनली आई गॉट थ्रू OCLD.
ओह, यू फाइनली गॉट इट.
यस. एंड दो साल फिर OCLD में रहे, जिस बीच में आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी शेफ, ओवर न्यू दिल्ली में. सो
OCLD डेज के बारे में बताइए.
सो OCLD शेफ, मतलब इट वॉज लाइक फॉर मी इट वॉज लाइफ एंड डेथ एट दैट टाइम. एंड आई वॉज वेरी वेरी सीरियस टू डू समथिंग इन लाइफ. एंड टू माई यू नो हैप्पीनेस, जो भी मैंने इंडस्ट्री में दो साल में सीखा था, आई कुड फील दैट आई वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ एज अबव द अदर पीपल हू वर इन माई बैच. तो वो चीज मुझे हेल्प करी. कल्नरी मुझे समझ में आता था, इट वॉज इन माई इंस्टिंक्ट. सो यू नो वेदर इट वॉज प्लेटिंग और वेदर इट वॉज एनीथिंग एल्स. सो शेफ जो मनावलन, जो कि आज डिशेज के को फाउंडर हैं, ही वॉज माई टीचर एंड देन शेफ बर्नी. बट एवरी सिंगल पासिंग डे आई थिंक OCLD ने कुछ किया हमारे साथ. उसने हमारी इंटरनल ईगो, प्राइड और जो भी कुछ हम सोचते थे उसको तोड़ा, अनलर्न किया और फिर हमने सही चीज लर्न करी. तो आई थिंक दैट 2 years वॉज वेरी ट्राइंग, वेरी टेस्टिंग, क्योंकि सुबह शेफ आई मीन वी वुड स्टार्ट एट anywhere between 6:37 in the morning and finish at 1 in the night. Mm-hmm. And that became a routine. ऐसा नहीं था कि कुछ दिन ऐसे थे, it became a routine. जब हम ट्रेनिंग करने के लिए आए तो सुबह हम लोग बॉम्बे में अंधेरी में 5:30 बजे उठ के 6 बजे की हम ट्रेन लोकल पकड़ते थे और रात की 1:20 की लोकल पे हम वापस आते थे. और एक कहानी ये भी है कि मुझे रुमाली रोटी बनाना बहुत फैसिनेटिंग लगता था. तो रात को 1:20 की लोकल पकड़ने के लिए 1 बजे हम लोग होटल से निकलते थे, रुमाल गीला करके नारीमन पॉइंट से चर्चगेट स्टेशन तक मैं रुमाली घुमाता हुआ जाता था और लोग मुझे देख के बोलते थे क्या पागल हो गया आदमी. बट वो एक जुनूनी था
बिल्कुल. और इस समय जो हमारे लिसनर्स में यंग बडिंग शेफ्स, अगर वो ये सुन रहे होंगे, इनिशियल ग्राइंडिंग जो आपने देखी, चाहे वो TGKF में, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में देखी, या आपने होटल में देखी, या OCLD के दौरान देखी. सो इफ दे आर लिसनिंग, यू नो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग, कि ये होती है मेहनत और लगन. और आपने जैसे बताया कि रुमाली रोटी, ये मैंने देखा, जिनको शौक होता है वो रुमाल या डस्टर गीला करके किचन में ही उसको प्रैक्टिस करते हैं. तो दैट इज वेरी वेरी गुड एंड इंस्पायरिंग. तो किस कुजीन की तरफ आपका झुकाव था?
मेरा झुकाव हमेशा से इंडियन क्यूजीन की तरफ था शेफ. मुझे इंडियन बहुत अच्छा लगता था. मुझे जो मसालों की जो इंट्रिकेसी थी वो बहुत अच्छी लगती थी, जो ग्रेवीज की फिनेस थी वो बहुत अच्छी लगती थी. एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ओबरा में 1 ही साल काम किया, लेकिन ज़्यादा मुझे इंडियन खाना ओबरा में सीखने को नहीं मिला, क्योंकि मुझे डाल दिया गया था. आई थिंक आप लोग जब निकले वहाँ से, तो देर वॉज एन एग्जोडस ऑफ शेफ्स और बैंक्वेट किचन में मुझे अकेला डाल दिया गया था. आई वॉज दी ओनली शेफ देयर. आपके टाइम में एक सीनियर किचन एग्जीक्यूटिव होता था, एक किचन एग्जीक्यूटिव होता था, और आई वॉज दी ओनली किचन एग्जीक्यूटिव विद यू नो 5 यूनियन पीपल, जिसमें डीएन सिंह भी एक था और जो 3-4 अच्छे लोग थे, बाकी 5 अप्रेंटिस थे. सो लिटरली अगेन यू नो लाइफ केम टू दैट फेज वेर आई वुड कम टू होटल एट 8:39 इन द मॉर्निंग. एंड बैंक्वेट में इतने घपले होने शुरू हो गए थे और सब चीजें ब्लेम किचन पे आता था कि किचन का खाना अच्छा नहीं था, इसलिए बिल में 30,000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, 50,000 का डिस्काउंट हो गया. सो आई मेड अ पर्सनल प्रैक्टिस कि मैं घर नहीं जाऊंगा, जब तक बिल साइन नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा. तो पार्टी खत्म नहीं होगी तो मैं 4 बजे चाहे 5 मैं लॉकर में ही सोता था. सो आउट ऑफ 1 year ओनरशिप, करेक्ट, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं नो भल्ला कैन रूइन माय लाइफ एंड नो यू नो यूनियन लीडर कैन रूइन माय लाइफ, बट आई विल मेक माय ओन लाइफ. सो वो 1 साल डिटरमाइनिंग था काफी चीजों के लिए. उसके बाद मैं शेफ 1 साल ही काम किया ओबरा न्यू दिल्ली में, एंड देन आई केम टू JW मैरियट मुंबई. वहां पे 4 साल मैंने काम किया. I was the chef of Lotus Cafe for about 2.5 years. Then I was promoted as chef de cuisine of Saffron. अब Saffron में जो मेरी being a chef journey थी वो बहुत inspiring और learning थी, because again जो हमारे mentor थे विनय जराज, he said Ajay I don't care, I want Saffron to become the best restaurant in Mumbai. And he made a plan. He said in 12 months we will do 12 different food festivals. Now that is impossible if you look at hotel infrastructure and जो भी हमारे सब होता है. बट उन्होंने क्या बोला कि एक शेफ दी क्यूजीन है, एक सू शेफ है. सो एक बंदा बाहर विजिट पे जाएगा, मतलब अगर हम पंजाबी फूड फेस्टिवल कर रहे हैं तो वी विल नॉट पुट द सेम पंजाबी डिशेज जो हर एक फूड फेस्टिवल में हर एक होटल डालता है, हम लोग नहीं डालेंगे। हम लोग करंट पंजाब में क्या चल रहा है वो डालेंगे। तो हम लोगों ने एक्चुअली सैफरन में एक ठेला खड़ा किया और वहां पर फिश फ्राई करी जिस तरह से पंजाब में आपको मिलती है, मतलब तो हम रियलिटी की तरफ गए उसको लेके। एंड देन आई कुड लर्न सो मच बिकॉज आई देन वेंट टू द स्ट्रीट्स, आई वेंट टू द शॉपकीपर्स, आई ट्रेवल्ड बिकॉज ऑफ दिस जर्नी, सो आई कुड रियली पिक अप फ्लेवर्स जो इंडिया में एक्चुअली हैं, और उससे बहुत बहुत अच्छी लर्निंग।
यू नो लर्निंग लर्निंग से मुझे याद आया कि ट्रेवलिंग मेक्स यू अ बेटर पर्सन, और खासतौर पर जब जुनून होता है ना कि मुझे ऑथेंटिक और ओरिजिनल ही बनाना है, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो और रिपीट व्हाट पीपल आर डूइंग, सो यू सेट योर ओन ट्रेंड्स, यू मेक योर सेल्फ यू नो द लीडर इन मेकिंग ट्रेंड एंड कंसेप्ट, सो वेरी वेल डन। तो ये बताइए, हम लोग बहुत होटल्स में काम करते हैं ड्यूरिंग अवर जर्नी इन द होटल्स, यू नो, पर एक ऐसा होटल होता है जहां पे हमें लगता है यहाँ हमने सबसे ज्यादा सीखा, या ये जो जर्नी है इस होटल के जो मैंने काम किया ये मेरी याददाश्त में हमेशा रहेगी क्योंकि यहाँ मेरे को बहुत कुछ गेन हुआ। तो ऐसा कौन सा होटल था जहाँ वेयर यू लर्न द मोस्ट एंड यू थिंक कि ये होटल आपके फाउंडेशन स्टोन की तरह था?
सो फाउंडेशन स्टोन में तो शेफ सेसिल शिमला ही रहेगा हमेशा, बिकॉज वो 1.5 साल ने बहुत कुछ सिखाया। मैं उस होटल में जब घुसा था, जब मुझे खीरा काटना भी शायद एक लाइन में नहीं आता था, बट व्हेन आई पास्ड आउट एज अ शेफ, यू नो, आफ्टर 1.5 ईयर, यू नो, आर एग्जीक्यूटिव शेफ देन वाज शेफ राजीव सिंह गुलशन, एंड ही एक्चुअली ऑनर्ड मी इन फ्रंट ऑफ द स्टाफ एंड ही सेड ही इज पासिंग आउट, ही इज नॉट लीविंग द जॉब, ही इज पासिंग आउट एज अ शेफ, यू नो, फ्रॉम दिस प्लेस, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू हियर दैट। उसका भी एक शेफ इंसिडेंट है, इट वॉज अ फायर टेस्ट फॉर अस, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। सेसिल एक छोटा होटल है, 73 रूम्स ओनली, एंड वी वर अ टीम ऑफ 16 पीपल, एंड सो आर देन जनरल मैनेजर मिस्टर जयदीप आनंद, उन्होंने एक रशियन ग्रुप लिया था होटल में, जिसमें जिन्होंने सारे रूम्स ले लिए थे, 71 रूम्स ले लिए थे, सिर्फ दो रूम बाकी थे, एंड ही डिड द होल आइडिया ऑफ सेसिल वॉज दैट एवरी मील हैड टू बी एक्सटैटिक। सो उन्होंने नाथपा जाकड़ी एक जगह है वहां पे, वहां जाके एक आउटडोर केटरिंग प्लान की थी शाम के डिनर की, विच मीन्स दैट आउट ऑफ द 16 स्टाफ इन द किचन 14 वर एट NJPC, टू ऑफ अस विच वर द न्यू पीपल वर लेफ्ट इन द किचन, कि हम लोग जो दो कमरे हैं उनका जो भी कुछ खाने का ऑर्डर आएगा हम लोग देख लेंगे। एट 6 PM यू नो द टूर ऑपरेटर सेड कि यू नो इट इज टू कोल्ड एंड पीपल वॉन्ट टू कम बैक टू द होटल, एंड मिस्टर आनंद सेड यस। सो शेफ गुलशन गॉट अस एवरीथिंग, मतलब आधी किचन बाहर थी, किचन के सारे लोग बाहर थे, हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं थे, एंड शेफ गुलशन कॉल्ड अस टू द रूम सर्विस केबिन, क्योंकि वहीं पे एक ही स्पीकर फोन था, उन्होंने अटेंडेंस ली इंक्लूडिंग द क्लीनर्स एंड जो भी हमारे साथ थे, हम टोटल 4 लोग थे, हमने 1.5 घंटे के अंदर पूरा बुफे लगाया आउट ऑफ वॉट एवर वी हैड। तो उन्होंने बोला कि यहाँ देखो 10 टमाटर पड़े होंगे, उसका टमाटर का सलाद बनाओ, यहाँ रोज चिकन पड़ा है उसको ये करो, यू नो, सो एक्चुअली जस्ट टू ऑफ अस यू नो चर्न्ड आउट द होल बुफे, एंड फॉर मी इट वॉज लाइक अ फेदर इन द कैप, क्योंकि आप भी जानते हैं शेफ की मतलब बुफे निकालने के लिए यू नीड एटलीस्ट 8 to 10 people एंड प्लानिंग एंड दिस एंड दैट। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, सो दैट फॉर मी इज अ रिमार्क,
व्हाट अ ग्रेट फीलिंग इट इज, यू नो, समथिंग वेरी सिमिलर हैपेंड टू मी ऑल्सो, एंड दिस वॉज ए वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन वन ऑफ द स्टेडियम्स, और वहां पे कैटरिंग जो है हमारे होटल की, एज यू जस्ट मेंशन, हमारा भी ऑलमोस्ट 80% 90% स्टाफ वहीं पे था आउटडोर कैटरिंग करने के, और वहां पे होगी बारिश होगी, बुफे लग चुका है, मैच अबॉन्डन हो गया, और क्रिकेट की टीम वापस बस में बैठी और होटल की तरफ आ गई। अब उनके लिए तो यू नो VIP कॉरिडोर होता है, एंड दे जस्ट केम डायरेक्टली टू द होटल, हम लोग को भीड़ में से आना पड़ा, बिफोर अस टीम वॉज इन द होटल और हमको उनके लिए डिनर बनाना था, सेम सिचुएशन में हम लोग थे, एंड दिस इज वेरी चैलेंजिंग, बट यू नो जब हमारी बेस या फाउंडेशन स्ट्रांग होती है वी ऑलवेज सक्सीड, तो दैट इज व्हाट शोज कि जो आपकी फाउंडेशन है एंड यू केम आउट ऑफ एंड यू वर्क अंडर ग्रेट लीडर्स लाइक जयदीप आनंद एंड शेफ राजीव गुलशन, सो दैट इज हाउ यू नो सक्सेस इज ऑलवेज टू बी देयर इन योर फीट। गुड, तो ये बताइए कि मास्टर शेफ आपको हाउ डिड इट कम टू योर वे?
It was God's gift to me, chef, to be very honest, because, you know, there were one fine day, there was just a phone call which landed on, you know, I was the executive chef of Goa Marriott that time, and, you know, just one guy came with a commie, with a, you know, with a KOT मुचड़ी हुई सिक्योरिटी थी, उस पर एक नंबर लिखा था, शिव आपके लिए फ़ोन आया। मैंने देखा कोई मार्केटिंग किसी कंपनी का है, किसी प्रोडक्शन हाउस का है, तो मैंने अपनी मार्केटिंग वाली लड़की को दे दिया और वो फिर भागते हुए आई एक घंटे बाद कि शेफ, मास्टर शेफ इज कमिंग टू इंडिया। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, तो बोलती नो नो दे वांट यू एज अ जज। मैंने कहा ओके देन लेट्स टॉक। तो लिटरली स्पीकिंग शेफ आई डिड नथिंग, बट वही है कि फिर वहां पे उन्होंने दे यू नो उन्होंने एक ऑडिशन रखा, फिर ऑडिशन क्लियर हुआ, यू नो उसके बाद मास्टर शेफ हुआ।
वेरी नाइस। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा कुछ वहां पे हुआ हो कभी सेट पे, ऑन द सेट्स ऑफ मास्टर शेफ और एनी अदर टीवी शो, वेदर इंटरेस्टिंग और सम गुफ अप कभी हो जाता है खाने से जुड़ा हुआ, एनीथिंग व्हिच इज यू नो वर्थ मेंशनिंग?
यस यस यस, बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे। इनफैक्ट आप खुद जानते हैं कि यू नो टेलीविजन और खाना जो है वो यू नो उनको उनका तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, बट यू नो इट वॉज इंटरेस्टिंग। हम लोगों का फर्स्ट चैलेंज बूट कैंप में आउट ऑफ साइट लोकेशन थी करजत में, बड़ा सा सेट था और एक उनका टेस्ट था मालाबारी पराठा। अब 100 लोगों को हमें क्रैश करके 50 लोग लेके आने हैं और उसमें सबको मालाबारी पराठा बनाना है, वो पूरी तरह से उसको फैलाना है, लेकिन गर्मी बहुत थी तो जो नॉर्मल डो गुंदा हुआ था उसमें खमीर आ गया। और जब एक्चुअली में जब रोल हुआ और जब वो बात आई कि चलो अब पेड़े लग जाने चाहिए, तो बैकएंड शेफ को समझ में नहीं आया कि क्या करा जाए, क्योंकि अब अगर वो फ्रेश आटा गूंदेगा तो वो मैलेबल नहीं होगा इतना और जो पुराना आटा था वो फर्मेंट हो गया था। तो देन एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि अक्षय कुमार जो था वो उसकी उल्टी घड़ी चलती थी, तो लिटरली मालाबारी पराठे की वजह से एक घंटा अक्षय कुमार ने हमें एक्स्ट्रा दिया विदाउट कॉस्ट।
सुपर,
बिकॉज ही समहाउ अंडरस्टूड कि ये चैलेंज जो है वो रियल
एंड ही हैज वर्क्ड इन द इंडस्ट्री, तो समझते हैं।
हाँ हाँ जी,
व्हाट अ सपोर्ट, वेरी नाइस। देन मास्टर शेफ के अलावा आपने बहुत सारे टीवी शोज किए हैं, उनमें से एक आपने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जिसमें आपने बिग डैडी शेफ करके जो एक प्रोग्राम है वो लिया। यू नो इस शो को देखने के बाद काफी मेन इंस्पायर हुए टू कुक एट होम, यू नो, सो यू आर वन ऑफ द लीडर्स जिन्होंने बॉयज एंड मेन स्पेशली यू एनकरेज देम टू कम इन टू द किचन एंड स्टार्ट कुकिंग एट होम। यू नो ये काम सिर्फ लड़कियों का, औरतों का या गृहणियों का नहीं है, इवन मेन शुड कुक। सो ये क्रेडिट आपको जाता है। तो ये बिग डैडी शेफ की शुरुआत कैसे ख्याल आया?
तो शेफ एक्चुअली मैं जब लंदन में था 3 साल वहां पे मैंने काम किया, कल्चर डिफरेंस देखा मैंने वहां पे। हम लोग इंडिया में जनरली फैमिली बैठती है, खाना खाती है टेबल पे, वो कल्चर वहां पे नॉन एग्जिस्टेंट था। एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि मैं अपने बच्चों को यहाँ रेज नहीं करना चाहता। आई वॉज जस्ट मैरिड देन एंड देन व्हेन वी केम हियर हमारे बच्चे हुए एंड आई रियलाइज दैट यू नो बीइंग अ डैडी इज सो डिफिकल्ट बट बीइंग अ मदर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो यू नो नोबडी लुक्स एट दैट फैशन। नो दो तरफ है इसके, पहली बात तो है कि बच्चों के लिए सुपर हीरो जो है वो टॉयज बन गए हैं या आयरन मैन बन गया है, बट उनके पिता उनके सुपर हीरो पोजिशन में है ही नहीं। सो अगर उनको सुपर हीरो पोजिशन बनना है तो उनको सुपर हीरो वाले काम करने पड़ेंगे। एंड फॉर अ चाइल्ड यू नो वेरी सिंपल थिंग्स लाइक चेंजिंग द डायपर्स टू यू नो कुकिंग सम टिफिन बॉक्स फॉर देम कैन बी अ सुपर हीरोइक थिंग फॉर द चिल्ड्रन। दे विल अडोर यू फॉर दिस एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि हाँ देर इज अ नीड फॉर दिस, बिकॉज जिसको देखो मेरा भाई, बड़े भाई, नहीं नहीं मेरे से नहीं होता, यू नो वाइफ को बोलते हैं बना दो, बट आई थिंक इट्स अ ट्रेडिशन जिसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक करना जरूरी था, बिकॉज अब लोग बोलते हैं अच्छा मेन कुकिंग आर यू नो लुकिंग वेरी गुड एंड लुकिंग वेरी हॉट एंड ऑल ऑफ दैट दे यूज, बट पहले वो कोई नहीं करता था। बट नाउ आई ऑल्सो रियलाइज इन माई यू नो यूट्यूब चैनल में देखता हूँ मैं, तो 50-50 का रेशियो है, 50% वेमेन है, 50% मैन है। तो कहीं ना कहीं आप सही बोल रहे हैं कि लोगों ने शुरू किया है एंड इसका श्रेय मैं ये बोलता हूँ कि बिग डैडी शेफ मैं नहीं हूँ, मैं ये नाम अपने लिए जरूर लिया क्योंकि मैं आई एम बिग इन स्टैचर, मतलब इन माय
बिग शेफ,
आई एम अ डैडी एंड आई एम अ शेफ। तो मैं ये कहना चाहता था, सब लिसनर्स को भी यही बोलना चाहूंगा कि यू आर द बिग डैडी शेफ, यू नो यू हैव टू बिकम द बिग डैडी शेफ, यू हैव टू बिकम द सुपर हीरो इन योर फैमिली, यू हैव टू गिव दैट डे ऑफ टू योर वाइफ एंड से कि ठीक है आज तुम आराम करो, आज मैं सब कुछ करूंगा। यू नो दैट्स सच अ सुपर हीरोइक थिंग, कोई मेल नहीं करता है। अब आज की डेट में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, और अगर वाइफ बाहर काम नहीं करती है तो भी घर में इतना काम होता है जो दिखता नहीं किसी को। तो व्हाई नॉट यू नो एरियल केम अप विद दिस एड सेइंग शेयर द लोड।
एब्सोल्युटली,
सो माय थॉट प्रोसेस इज द सेम, शेयर द लोड।
दिल को जीतने का रास्ता पेट से होता है और उसका जिम्मेवारी सिर्फ गृहिणी या लेडीज की नहीं है, आदमियों की भी है. दिस इज व्हाट यू हैव शोन टू द पीपल, ग्रेट जॉब. तो देयर आर मोर शोज दैट यू हैव डन यू नो अदर देन मास्टर शेफ एंड बिग डैडी, तो और क्या क्या आपने किया है? लिस्टनर्स वुड लव टू नो दैट.
मास्टर शेफ के बाद शेफ पहला जो था वो हाइटी था, वो काफी अच्छा चला. इनफैक्ट एक टाइम आया जब लोगों ने मुझे मास्टर शेफ से कम और हाइटी से ज्यादा रिलेट किया, ये देखो ये हाइटी वाले शेफ जा रहे हैं. और उसके बाद नॉर्दर्न फ्लेवर्स करके एक शो आया जो बहुत फेमस हुआ, उसके 3 सीजन हमने किए. और उसके बाद इंडियाज 50 बेस्ट डिशेस के 2 सीजन अभी तक हो चुके हैं. दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट सीजन ऑन जी जेस्ट. उसके अलावा मतलब ऑन द डिजिटल चैनल तो काफी चीजें चलती रहती थी इधर उधर, बट मोस्टली टीवी प्रोग्राम्स में दीज वर द टीवी प्रोग्राम्स दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ.
तो कैसे मन किया एक दिन कि अब टीवी और बिजनेस करना है और होटल लाइन छोड़ देनी है, तो ये आपने मन कैसे बनाया? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है स्पेशली द वर्किंग क्लास जो सर्विस करते आ रहे हैं उनको अपना जॉब छोड़ के एंड गेट एंड टेक ए प्लंज इनटू अ बिजनेस. इट्स अ डिफिकल्ट यू नो कॉल.
वेरी ट्रू.
तो आपने कैसे लिए?
तो शेफ आप मैंने शुरू में बोला था कि आप और शेफ संजीव कपूर ने काफी चीजों में हमारा पाथ फाइंड किया है एंड इसका श्रेय मैं शेफ संजीव कपूर को दूंगा. एक दिन आई वॉज द एग्जीक्यूटिव शेफ एट वेस्ट इन मुंबई एंड वन मर्सिडीज ई क्लास कम्स इन और उसके पीछे शेफ कोट टंगा था. तो वो शेफ की गाड़ी थी एंड यू नो आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं पोर्च में खड़ा था उनको रिसीव करने के लिए, आई थॉट टू माई सेल्फ कि इंडिया में कितने शेफ्स हैं जिनके पास ऐसा औहदा ऐसा स्टेचर है? बहुत कम. सो आई थॉट टू माई सेल्फ वाई नॉट मोर पीपल शुड हैव दिस. You know, ठीक है आज भी मेरे पास मर्सिडीज नहीं है बट आ जाएगी. द पॉइंट इज कि मर्सिडीज इज नॉट अ सक्सेस रैंकिंग बट मर्सिडीज वॉज फ्रीडम ऑफ थॉट, मर्सिडीज वॉज फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी, मर्सिडीज वॉज कि आज मैं शेफ संजीव कपूर का अगर मैं देखता हूँ तो ही कैन डू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू. ही इज नॉट लिमिटेड टू यू नो माई डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेज टेलिंग मी कि नहीं नहीं ये फूड फेस्टिवल अभी मत करो, ये कल करना या बाद में करना, ये अभी ऐसे नहीं वैसे नहीं. सो somewhere as a chef I was feeling very constricted kyunki I gave in my best wherever I was for 2 or 3 or 4 years. uske baad mujhe samajh nahi aata tha ki main hotel mein kya add karu, you know I was just going as a body to work and then coming out. I didn't want
routine sa ban gaya tha,
routine ban gaya tha. And western mumbai was one jo aapne ek question pucha tha ki kaun sa hotel sabse yaadgar rahega. Actually meri zindagi mein yaadgar western rahega because as a chef I was actually able to impact that hotel a lot. तो मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे चेंज लेके आया, बहुत सारी मतलब चीजें इंट्रोड्यूस करी. फूड कॉस्ट बहुत हाई थी उसको कम किया. यू नो एक टीम कॉमरादरी लेके आया. यू नो शेफ्स वर बीइंग लुक डाउन अपॉन इन दैट होटल, वो बढ़ना शुरू हुआ. तो बहुत सारी चीजें हुई बट स्टिल ऑन टॉप ऑफ दैट आई वाज यू नो वंस टोल्ड बाय द ओनर दैट यू नो दिस इज नॉट राइट एंड दैट इज नॉट राइट. सो आई एक्चुअली गॉट अपसेट एंड आई टोल्ड हिम आई वर्क फॉर फ्री बिकॉज जो फूड कॉस्ट में जितने पैसे मैंने उनके लिए बचाए थे उसे मतलब वो हाफ अमाउंट की सैलरी में उनसे लेता था.
I have come to your hotel, I have visited and we have met there and I have seen you have been doing some great things there and very innovative, creative and new trends you brought in even to the buffet. You elevated it to the next level. So I remember the great job that you have done and what a team you created there. You know, जाने के बाद भी लोगों ने याद किया आपको वहाँ पे.
Thanks sir. Thank you. And मैं इसका श्रेय मैं देना चाहूंगा शेफ एल्टन हर्टिस जो कि आज जनरल मैनेजर हैं कोलंबो मैरियट के, और शेफ विनय जराज हु इज नो मोर, ही डाइड एट द एज ऑफ 41 बट ही वॉज द एरिया डायरेक्टर ऑफ मैरियट. ये दो लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं मेरी क्रिएटिविटी को स्पार्क करने के लिए क्योंकि दे पुश्ड मी टू अ वॉल. दे सेड नॉट इनफ, यू नो थिंक मोर, नॉट इनफ, थिंक मोर. लोटस कैफे वॉज द बिजिएस्ट कॉफी शॉप इन बॉम्बे बट ही वॉन्टेड मी एज अ शेफ ऑफ लोटस कैफे टू चेंज द डिस्प्ले एवरी डे. एंड आई सेड शेफ इट्स इम्पॉसिबल. ही सेड आई डोंट नो दिस वर्ड कॉल्ड इम्पॉसिबल. यू नो सो दे पुश्ड मी. यू नो आई यूज्ड टू क्राई एज अ शेफ, आई यूज्ड टू क्राई इन द ऑफिस बट देन
आई रिमेंबर आप OSNE इतने सारा लेके आए थे, इवन वो टिफिन्स, कलरफुल टिफिन्स थे जो आपने बुफे पे लगाने शुरू किए थे. आई रिमेंबर दैट यू हैव डन लॉट्स ऑफ या न्यू OSNE सर्चिंग जॉब ऑल्सो. And you know, hotels mein kaam kiya itne saal, uske baad suddenly now into business, your own business. And what was the first business you got or started? Aur feeling kaisi thi? Matlab jahan to pata hai ki mahine ke end mein mujhe salary aa hi jayegi, aur ab ek aisa time aa gaya ki now you have to run whole day and ensure that you know your earnings remain there. Ghar to chalana hi hota hai.
Jaise feeling ek hi hai, humbling. इट इज वेरी हम्बलिंग बिकॉज यू नो वट एवर वी डू इन दिस इंडस्ट्री इट इज एनी वेज हम्बलिंग, चाहे हम जॉब करें चाहे हम बिजनेस करें, बट स्पेशली मेरा जो फर्स्ट मतलब आप बोल सकते हैं वेंचर बर्गंडी बॉक्स, इसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, इन्वेस्ट भी किया था और काम भी किया था. सो वी फ्रॉम अ फाइव स्टार डिलक्स होटल किचन वी केम टू अ यू नो शॉप फ्लोर विच इवन द फ्लोर वॉज ब्रोकन. और दो तीन दिन ऐसा हुआ था कि क्लीनर्स नहीं आए थे, तो मैंने खुद पूरी किचन को क्लीन किया इंक्लूडिंग द फ्लोर, एंड दैट वॉज हम्बलिंग. बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, कल को अगर ये 1 करोड़ रुपए की बनेगी तो वो मेरे 1 करोड़ रुपए होंगे, यू नो. सो दैट इज द थॉट दैट आई वॉज गोइंग बाय, कि चाहे मैं कुछ भी करूँ अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ. एंड विद दैट पैशन एंड विद दैट एनर्जी आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, एंड यू नो गॉड रियली हेल्प मी टू टेक वाइज स्टेप्स एंड देन कीप गोइंग फॉरवर्ड. वन लर्निंग विच द पैंडेमिक टॉट अस ऑल, यू नो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. यू नो पैंडेमिक ने जिनके पास भी एक एक बास्केट थी वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो गया था उनके लिए, बट क्योंकि अंडे अलग अलग बास्केट्स में थे इसलिए सर्वाइव करा.
आपने पैंडेमिक का जिक्र किया तो मैं जानना चाहूंगा लॉकडाउन में आपने क्या किया.
शेफ लॉकडाउन में बहुत काम किया, इनफैक्ट इट वॉज बिजियर देन नॉर्मल, क्योंकि पहले नॉर्मल डेज में यू वुड हैव योर यू नो कॉमीज बिहाइंड यू, हेल्प बिहाइंड यू एंड एवरीथिंग. तो लॉकडाउन में मेरे दो बेटे, मेरे डायरेक्टर्स थे, मेरी वाइफ और मैं मिलके हम लोग, क्योंकि हमें वीडियो मैंडेट्स मिले थे काफी सारे शूट करने के लिए घर से ही, बहुत सारे लोग डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे, तो डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर हमने शूट किया है, यू नो वहां से हमने वीडियोज निकाले हैं, एडिट सीखा, यू नो बहुत सारी चीजें सीखी जो नहीं आती थी, यू नो हमें समझ भी नहीं आता था कि अच्छा ये कैमरा, ये लाइट, ये साउंड. फिर धीरे 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 गलतियां करते गए, सीखते गए, बट आई थिंक दैट पैंडेमिक वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जर्नी फॉर अस.
सुपर, वेरी नाइस. तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब यू स्टिल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड डिजिटल प्रेजेंस भी आपकी काफी है डिजिटल मीडिया पे, सो फ्यूचर प्लान्स क्या, इन केस यू वांट टू डिस्क्लोज इट्स अप टू यू.
यस यस ऑफकोर्स शेफ, वैसे तो प्लान्स यू नो मैं बाइबल में विश्वास रखता हूँ एंड उसमें लिखा है कि यू नो वी कैन ओनली मेक प्लान्स बट गॉड इज द वन हु एक्चुअली ब्लेसेस देम. बट प्लान्स ऐसे है शेफ, मैंने एक अभी ऑनलाइन अकेडमी खोली है कॉल्ड कुक अकेडमी, तो उसमें फिलहाल मैं उन लोगों पर फोकस कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, जिनको नाइफ भी पकड़ना नहीं आता, तो आई एम एक्चुअली टेकिंग देम थ्रू दैट स्टेप बाय स्टेप कोर्स एंड इट्स अ वेरी चीप यू नो 199 rupees पर क्लास काइंड ऑफ थिंग. बट इवेंचुअली आई वॉन्ट टू ट्रेन, मैंने रियलाइज किया कि जैसे मेरे को OCLD में जाने में इतनी दिक्कत हुई थी, तो 3 से 4 लाख होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हर साल पास आउट होते हैं, बट OCLD के या WMI के सीट सिर्फ 10 या 11 है, तो उनको प्रिपरेशन कराने के लिए आई वॉन्ट टू यूज दिस अकेडमी. आई वॉन्ट टू यूज दिस अकेडमी फॉर यू नो ट्रेनिंग शेफ्स अब्रॉड. यू नो आजकल ट्रैवल कम हो गया है, तो ऑन जूम सेशंस आई कैन यू नो चेंज मेन्यूज फॉर पीपल, यू नो टीच देम, ट्रेन देम द राइट वेज ऑफ कुकिंग. यू नो ऑल्दो दे कैन टेक अ यूट्यूब चैनल वीडियो एंड मेक अ बटर चिकन, बट यू नो देर आर न्यूआंसेस विच यू एंड आई बोथ नो कि कहाँ गलती करते हैं लोग, तो उनके साथ जूम सेशंस में यू नो इसको ले जाके. तो आई रियली वॉन्ट टू ग्रो दिस एज अ कुक अकेडमी एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो आर कंसल्टिंग बिजनेस टू now to the next level. We want to create some very good concepts across the country and I'm very very hopeful that new things will happen.
I'm sure. New things se baat aaya, aajkal ek naya trend hai, bilkul naya to nahi hai, kafi time ho gaya isko. Hum dekhte hain ki kafi sare bloggers aur influencers aur food critics hain jo abhi ye trend ek chal raha hai aajkal. To iske bare mein aapke kya views hain?
Sir, I think बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज हैं मेरे इसके बारे में, क्योंकि एक टाइम था जब मैं कुछ समझ भी नहीं आता था कि ये कौन लोग हैं एंड व्हाई डू दे इवन एग्जिस्ट, बट देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि दे आर द मशीनरी टू द सोशल मीडिया मार्केटिंग. नाउ एक आवाज यू नो कभी भी बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए बहुत सारी आवाजें चाहिए किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए. ब्रांड्स को ये समझ में आ गया कि यू नो दे नीड टू टाई अप विद 3 different layers ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, सो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मीडियम इन्फ्लुएंसर्स एंड हाई क्लास इन्फ्लुएंसर्स. जिनके 1 million के ऊपर फॉलोइंग है उनको वो हाई क्लास इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, माइक्रो वालों को जो 5 से 10,000 है. तो एवरी जॉनर इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्टन ब्रांड. सो एज अ ब्रांड आई थिंक फॉर मी अगर मैं अपना भोंपू खुद बजाऊं तो लोग मुझे बोलेंगे ये बड़ा प्राउड है, बट अगर लोग मेरा भोंपू बोले तो वो उसमें एक वैल्यू आता है एंड आई थिंक दैट इज वॉट द फूड ब्लॉगर्स आर एबल टू डू. इफ यू आर रियली डूइंग गुड good in whatever you're doing, then you know somebody is not forced to write something good for you, but they will write it out of their hearts and minds. This also brings me to a point where this is a very confused state. You know, sab log sochte hain ki main food blogger ban jaunga. You need to start understanding food. You need to at least have the basic knowledge of food or photography, and then start blogging. Now, the good part about blogging is that it's my personal expression, but the bad part of it is that everybody has an expression. It can be good,
it
bad.
It can be anything.
So we'll have to manage with our wisdom around it.
अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम बात कर रहे थे IHM में जब बच्चा अपने आप को एनरोल करता है या सोचता है कि मैंने होटल मैनेजमेंट करना है, तो उसका एक सपना होता है कि मैं पास आउट होऊंगा, मेरी कैंपस इंटरव्यू होंगी और मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। ये सपने सबके होते हैं, हमारे भी थे, लेकिन पैंडेमिक में ऐसा हुआ कि बच्चे पास आउट हुए और उस साल कोई कैंपस इंटरव्यू नहीं हुई, कोई जॉब नहीं थी, बल्कि जो जॉब में थे उनकी जॉब भी जा रही थी। पैंडेमिक ने ऐसा कईयों के साथ किया है। तो What do you have to say to those students जो pass out तो हुए पर उनके लिए there was nothing available in the market, hotels में कोई job थी ही नहीं, so they should not get disheartened, उनके लिए आप क्या बोलना
चाहेंगे? Correct. तो chef मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे साथ भी same चीज हुई थी। 1998 was not a very good year, मुझे कहीं job नहीं मिली थी, हाथ पैर बहुत मारे थे, लेकिन ये pandemic किसी ने नहीं देखा था, ना किसी ने plan किया था, ना किसी ने सोचा था। So I actually related this and I've done many talks on this, and मैं सब बच्चों को यही समझाने की कोशिश की है कि remember a time, हमें से बहुत सारे लोग जो है ना क्लास फोर्थ या फिफ्थ में या सिक्स में फ्लंक कर गए होंगे, फेल हो गए होंगे, एंड आज की डेट में अगर हम अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सक्सेसफुल लोग भी ऐसा हुआ है कि वो एक क्लास फेल हो गया। नाउ इन दिस सिचुएशन पूरी क्लास ही फेल हो गई, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। सो अगर मैं बोलूं कि मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया या मेरा 10 करोड़ का लॉस हो गया या 1000 करोड़ का लॉस हो गया, आई विल बी स्टूपिड इन सेइंग दैट। आई जस्ट हैव टू से पूरी क्लास फेल हो गई है, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, चलो शुरू करते हैं। सो आई थिंक दैट्स द एटीट्यूड वी हैव टू ऑल गो विद कि यू नो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, लेट्स स्टार्ट अ न्यू स्टोरी, लेट बीगॉन्स बायगॉन्स। अब ये टाइम कितनी देर चलेगा उस पर हम लर्क करने से अच्छा हम लोग अपने आप को प्लान कर सकते हैं कि आगे हम क्या करने वाले।
That is very true and very inspiring. जो भी सुन रहे हैं young budding chefs या aspirants, you know, they have to understand this. The pandemic किसी के हाथ में नहीं था और now it is behind us. I think आगे वाला जो future है, that is what we need to focus on. So coming towards almost the end of the talk, एक rapid fire round, बड़े आसान से सवाल हैं. So we want to see, you know, it's very interesting. Of course ये सवाल आपसे कईयों ने पूछे होंगे और जाने होंगे, सो यू ऑलरेडी नो फॉर ओवर दीज इयर्स ये क्या आंसर है, बट आई वुड आल्सो लाइक अवर लिसनर्स टू नो फ्रॉम यू। आपका फेवरेट फूड?
गलौटी कबाब।
फेवरेट डिश? तो आपने इसी में आ गई। फेवरेट इंग्रेडिएंट? यू कांट डू विदाउट इट।
कसूरी मेथी।
ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन जवाब आपका वैसे एक शब्द होगा। हम घर में अब बचपन से माँ के हाथ से खाते आए थे और शादी के बाद हमारे घर ज्यादातर हमारी वाइफ खाना बना, तो किसका खाना ज्यादा पसंद है, माँ के हाथ का या वाइफ के हाथ का?
वाइफ।
अदरवाइज लड़ाई हो जाएगी घर में। तो नहीं, ठीक बात है। तो यू स्टे इन मुंबई एंड यू हैव डन शोज विद मेनी सेलिब्रिटीज, तो हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड स्टार?
सैफ अली खान।
एंड यू हैव बीन ट्रेवलिंग अ लॉट, यू हैव सीन लॉट्स ऑफ आउटलेट्स, विच इज योर favorite food destination?
Yaocha, Mumbai.
Or one person you would like to cook for?
I have not thought of that question, but I think everybody says President of United States or somebody like that, but I think I would like to cook for an old age home one day. I've never done that.
आपने होटल में भी काम किया है, आपने टीवी पे भी और इतना साल बिताए हैं, सो कौन सी जॉब आपको ज्यादा पसंद है, कौन सा काम ज्यादा पसंद है, होटल शेफ, टीवी शेफ?
That's a very tough question. close to me is TV chef.
Any cooking scars during your all these years in kitchen? Pehle ke haath katta tha, jalta tha. Any cooking scars you have?
Many. Yahan pe pura ek tandoor ka maak hai, jala hua. So ye hai. Aur ek scar jo dimag mein hai, yahan pe thoda bahut reh gaya hai. मखनी ग्रेवी बन रही थी और मैंने काजू का पेस्ट बिना पानी में थिन किए डाल दिया, तो पूरा मखनी जो है वो कर्डल हो गया। तो शेफ ने बोला कि इसको स्ट्रेन करो, इट वाज ऑलमोस्ट 100 केजीज ऑफ मखनी, और पतीला ट्रेन कर रहे थे पलटते हुए, थोड़ा सा पतीला टिल्ट हो गया, वो मेरे हाथ के ऊपर से मखनी जा रही है, बट आई कुडंट डू एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो मखनी नीचे गिर जाती, तो आई लेट द मखनी गो, द बॉइलिंग मखनी ओवर माय हैंड. तो वो जब निकला तो फिर वो चमड़ी निकल गई.
तो इट्स नॉट इजी टू बी अ शेफ, आई कैन टेल यू, वी ऑल हैव गॉन थ्रू, वी ऑल हैव गॉन. सो बिफोर वी साइन ऑफ, यू नो यू हैव लॉट्स ऑफ फैन हु विल बी लिसनिंग दिस, देयर मस्ट बी बडिंग शेफ्स लिसनिंग टू यू, उनको कुछ आप सलाह देना चाहेंगे टू इंस्पायर देम?
यस शेफ, आई यू नो मैं अपने जीवन को कई बार सारांश में लेके आने की कोशिश करता हूँ, तो तीन शब्द यू नो मैंने लिखे हैं अपने लिए, विच इज एक्चुअली एन एक्रोनिम, ASK, विच मीन आस्क. सो ASK में A इज एटीट्यूड, S इज स्किल एंड K इज नॉलेज. The good part is that you know all three are very important, but they have to be in this order. It cannot be KSA, it cannot be SAK. पहली सबसे important चीज है attitude, good attitude. लेकिन question mark ही रहता था कि हम लोग सोचते थे कि इसका good attitude है, इसका मतलब क्या है? What does that really mean? So for me, I have derived out a person with good attitude means always ready. He is always ready to do anything. ये करना है मैं करूँगा, कुछ करना है मैं करूँगा. यू नो सो हम जब इस टाइप के लोगों के से सामने आते हैं तो हम बोलते हैं हाँ इसका एटीट्यूड अच्छा है, विच मीन्स दैट ही इज ऑलवेज रेडी. स्किल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जब तक आदमी इंसान अपनी स्किल सीखेगा नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड. क्योंकि जो शेफ ने आज जैकेट पहनी है, जिस दिन मेरे को पहली बार ब्लैक बटन मिले थे आई क्राइड, बिकॉज आई रियलाइज कि इसकी वैल्यू क्या है, यू नो इसका इसका मतलब क्या है. इट इज एक ओहदा है, ये ओहदा कमाना पड़ता है और उसके लिए आपको स्किल बहुत जरूरी है. एंड देन कई बार कुछ शेफ्स बोलते हैं हाँ मेरी स्किल बड़ी अच्छी है, मेरा एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, लेकिन नॉलेज नहीं है, आगे नहीं बढ़ना चाहते. नॉलेज हमेशा आपको आगे लेके जाती है, इट टेल्स यू द फ्यूचर, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर फ्यूचर. सो नॉलेज, कंटिन्यूअस नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नो यू हैव टू हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, हैव टू हैव ग्रेट स्किल्स. इफ यू डोंट हैव, कीप एक्वायरिंग देम, एंड नॉलेज इज नेवर एंडिंग, यू कीप यू नो एडिंग योर नॉलेज एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल ईयर.
Thank you so much. I hope these words are very inspiring to both your fans as well as to the budding chefs. So thank you very much, Chef.
Thank you very much. I also want to say one thing, Chef. Chef, you have been such a big inspiration to, you know, all of us, you know, and it's almost like one generation talking to another. I just want to commend you and thank you for, you know, being the stalwart of this industry, because like you said, it's not easy in this industry. This industry throws you on a challenge every day. But aap jaise log jo aaj bhi date hue hain, you know, it gives us the next generation the satisfaction and the courage to keep going forward.
Thank you so much. I mean, these words are very, very encouraging to me also. At whatever age you listen to them, you know, there's they help you a lot to keep moving and keep going on. Thank you for listening to Beyond Cooking with Chef Rakesh Sethi. मेरे podcast को जरूर follow करें. अगले episode में मैं एक और हस्ती को लेकर आऊंगा और उनसे सुनेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी. तब तक के लिए राकेश सेठी का स्वाद भरा नमस्कार.